ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 59 भक्ति के अंगों का वर्णन किया है और आज से हम लोग आखिरी जो पांच हैं, पांचांग, जिसको पांचांग भक्ति कहते हैं, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। और जैसे हमने शुरू में बताया था, प्रारंभ में, ये जो 64 भक्ति के अंग हैं साधन भक्ति के, उसमें जो पहले जो 10 हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि पहले 10 प्रवृत्ति का मतलब है जो कि स्वीकार करना चाहिए, पहले 10। और उसके बाद 11 से 20 जो थे वो अंग हैं जिनको नहीं स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करना और नहीं स्वीकार करना है, ये दोनों ही भक्ति के अंग माने गए हैं। और उसके बाद 21वें अंग से लेकर 59वें अंग तक हम लोगों ने साधन भक्ति के अंगों का वर्णन किया था। और अब जो है ये पांच सबसे प्रभावशाली जो भक्ति के अंग हैं उसका हम लोग वर्णन करेंगे। हालांकि जो पांच जो पहले वाले मुख्य हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किया है, आदो गुरु पादाश्रय से शुरू करके पहले पांच अंग भी बड़े ही मुख्य अंग माने गए हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण माने गए हैं। लेकिन आखिरी जो पांच अंग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। और ये जो पांचांग भक्ति का वर्णन जो है बहुत विस्तार से हमें मिलता है। और ये सब जो भक्ति के अंगों का वर्णन, खासकर ये जो पांचांग भक्ति के वर्णन का वर्णन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को दिया प्रयाग में, और 10 दिन के लिए लगातार शिक्षा दी। तो श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की उन शिक्षाओं को ही रूप दिया है, इसलिए भी उनका नाम रूप गोस्वामी है। उन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के रूप में उसको प्रस्तुत किया। तो श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग इस साधन भक्ति का अभ्यास करते हैं। जिस तरह से श्रील रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति करने के लिए कहा है, उसी तरह से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन भक्ति के अंगों की स्थापना की है। इस कृष्ण भावना आंदोलन में भी श्रील प्रभुपाद ने इस सभी भक्ति के अंगों का वर्णन किया है और स्थापना की है। और ये जो पांचांग भक्ति के अंग जो हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं, इन सभी अंगों का वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किया है। और श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्थापित किया है। तो ये श्रील प्रभुपाद की विशेषता है। तो अब हम लोग पांचांग भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया है, जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु बतला रहे हैं, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवन, ये इसको कहते हैं पांचांग भक्ति। पांचांग भक्ति यानी कि पांच अंगों के द्वारा की गई भक्ति, और इसलिए इसका पालन करना अति महत्वपूर्ण है। और खासकर ये जानते हुए कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से है, तो हम लोग एक एक करके एक एक अंगों का वर्णन करेंगे। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले यहां पर वर्णन कर रहे हैं, तत्र श्री मूर्ति यथा। इसमें श्रील रूप गोस्वामी वो श्लोक फिर से उदित कर रहे हैं जहां पे ये वर्णन मिलता है कि हमें केशी तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। पहले सुना था ना आपने, केशी तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, वहां पर गोविंद जी को आपने देख लिया जो त्रिभंग रूप में खड़े हैं और जो कि मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, उनके अदर बिंब के समान हैं। तो ये रूप मत देखिए आप, अगर ऐसा देखेंगे जाकर आप केशी तीर्थ में इस रूप को देखेंगे तो क्या होगा, आपका आकर्षण संसार के प्रति समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा श्लोक उदित किया गया है, स्मेरान भंगी त्रया परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी निस्ता धर किशल्याम उज्ज्वलम चंद्र केन गोविंदाख्यम हरितनुमितः क्षेशी तीर्थ उपकंठे मा प्रेक्षिता स्तव यदि सखे बंधु संगे स्त्री स्त्री संगा सी रंगा। बोलते हैं कि अगर आप की अभी भी इच्छा है मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ, अभी भी आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, या मित्रता चाहते हैं, या उनके साथ अभी भी आप समय बिताना चाहते हैं, तो आप कृपा करके केशी तीर्थ में जाइए। केशी तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रासलीला के बाद भी वहाँ पर जल केली होती है, और तो और बंसी वट बहुत ही निकट है वहाँ पर, जहाँ पर ये महारास भी होता है। तो यहाँ श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ओ माई फ्रेंड इफ यू डिजायर टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स देन डू नॉट लुक अपॉन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड गॉड गोविंदा वॉन्डरिंग नियर केशी तीर्थ ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर विद अ स्लाइट स्माइल ऑन हिज लिप पोस्ट विद थ्री बेंड्स इन हिज बॉडी आईज ग्लैंसिंग एवरीवेयर इन अ क्रूकड फैशन फ्लूट प्लेस ऑन हिज रेड लोअर लिप लाइक अ टेंडर बर्ड एंड शाइनिंग ग्लोरियसली विद अ पीकॉक फ्लेवर पीकॉक फेदर। तो श्रील जी गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं, यहां मत देखो का अर्थ है देखो। श्रील जी गोस्वामी बोलते हैं यहां मत देखो का अर्थ है देखो, कृष्ण की ओर देखना चाहिए, कृष्ण के सुंदर रूप को देखना चाहिए, उनके लावण्य को देखना चाहिए, कृष्ण के सुंदर रूप को देखो। यही वास्तव में इस प्रतिबंध का यहां पर जो मूल अर्थ यही निकलता है। तो कई बार ऐसे बताया जाता है ना, क्योंकि कई बार बना कर पर लोग ज्यादा जाते हैं, है ना, वृंदावन मत जाओ, वृंदावन मत जाओ, दिल्ली में ही प्रचार करो, तो लोग छुप छुप के निकलते हैं वृंदावन, है ना, मना करते हैं तो ज्यादा जाते हैं। कई बार बोला था जाओ जाओ रोज वृंदावन जाओ, वो जाते नहीं फिर, है ना। तो इस तरह से कई बार कहने का तरीका होता है, ये आजकल एक नया तरीका है, इवन आजकल जो पब्लिसिटी का तरीका है, मार्केटिंग का तरीका यही है कि वहां पर एक बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड लगा दिया जाता है, स्माइल लिखा होता है उसमें केवल, है ना, पता नहीं चलता है ये कहना क्या चाहता है, ये ऐड क्या कहना चाहता है। तो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है प्रचार करने का। इसी तरह से यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि मत जाओ, अच्छा नहीं है वहां पे जाना, जाओगे तो ये हालत होगी। तो श्रीमूर्ति सेवा, श्रीमूर्ति सेवा यहां पर बता रहे हैं कि श्रीमूर्ति की जो सेवा है वो श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए। श्रीमूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवन, यहां पर श्रील रूप गोस्वामी और सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव ये दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से कि अगर आपको साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं गोविंद देव जी के केशी तीर्थ में, तो कम से कम जो गोविंद देव जी का विग्रह है उसका तो हमें दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि विग्रह का दर्शन करने मात्र से प्राकृत भक्तों में भी श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद ने भी नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 109 में श्रील प्रभुपाद कहते हैं सो पोटेंट दीज फाइव प्रैक्टिसेस आर सो पोटेंट दैट अ स्मॉल अटैचमेंट फॉर एनी ऑफ दीज फाइव आइटम्स कैन अराउज डिवोशनल एक्सटेसी इवन इन अ नियोफाइट। यानी कि भाव भक्ति का आभास होता है प्राकृत भक्तों में भी देखा जाता है, थोड़ा सा भी अगर कोई आकर्षण जागृत कर लेता है पांचांग भक्ति की ओर तो उस भक्त में भी भाव का आभास होता है, भाव भक्ति नहीं के सर पर नहीं पहुंचा है लेकिन उसका आभास होता है, उसको आभास होता है। तो ये पांचांग भक्ति के कितने प्रभाव बताए गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं भाव भक्ति के अध्याय में आगे चलकर श्रील रूप गोस्वामी बताएंगे 18वें अध्याय में कि भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं, अव्यर्थ कालत्वम शांति विरक्ति मान्य शून्यता आशबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। ये 9 लक्षण है भाव भक्ति के, ये भाव भक्ति के 9 लक्षण है, यानी कि कोई अगर भाव भक्ति में स्थित है तो उसमें ये 9 लक्षण पाए मतलब होने चाहिए, कोई अगर भाव भक्ति के स्तर पर है तो, इसके बारे में हम बाद में वर्णन करेंगे। लेकिन जो प्राकृत भक्त है उसको इन भावभक्ति के लक्षणों का आभास होता है पांचांग भक्ति का पालन करने से। यानी कि पांचांग भक्ति कितनी प्रभावशाली है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे, कोई पूछ सकता है कि मैं तो अभी वृंदावन जाता हूं, मैं विग्रह का दर्शन करता हूं, मैं नाम संकीर्तन में भाग लेता हूं, भागवत का श्रवण करता हूं, श्रीमूर्ति की सेवा करता हूं, पहले आकर्षण था अब आकर्षण नहीं है, क्या कारण है? पूछते ना लोग, पहले हम वृंदावन जाते थे आनंद आता था, अब आनंद नहीं आ रहा है, उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यह है कि अब अपराध होने लगा है। अपराध होने से भाव का आभास भी नहीं होता। अगर भाव का आभास भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? केवल अपराध हो रहा है। क्योंकि अगर किसी को भाव का आभास हो रहा है, अगर वो अपराध नहीं करता है तो कुछ ही मतलब ज्यादा समय ना लेकर कुछ ही समय में यानी कि एक अवधि के बाद वो प्राकृत भक्त भी जो है उन्नत भक्त बन जाएगा और भाव भक्ति के धरातल पर पहुंच जाएगा। जैसे अजामिल की कथा में देखिए, अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, वो था संकेत नामाभास। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, भगवान नारायण को नहीं बुलाया, लेकिन विष्णु दूत आ गए और दोबारा उनको जीवन प्राप्त हुआ। यमदूत भी आए, दोबारा उसी शरीर में उनको आगे जीवन प्राप्त हुआ। 12 साल हरिद्वार गए, वहां जाकर उन्होंने और भक्ति की और उसके बाद शुद्ध नाम लेकर वो वैकुंठ चले गए। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, सामान्यतः तो लोग इस प्रकार का आभास करके फिर अपराध करते हैं, फिर वैसे ही दोबारा प्रोसेस में आते हैं। लेकिन अजामिल ने नामाभास का उच्चारण करने के बाद, नाम का आभास होने पर, शुद्ध नाम का आभास होने पर, उसके बाद उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और ऐसे नामाभास से वो शुद्ध नाम में पहुंच गए और शुद्ध नाम लेकर भगवत प्रेम जागृत हुआ और वैकुंठ से वही विशुद्ध दूत आए उनको लेने के लिए वापस और वो चले, वैकुंठ चले। यानी कि नामाभास के बाद अगर आप अपराध नहीं करते हैं तो शुद्ध नाम तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे प्रारंभ में कई बार हम आते हैं, कीर्तन में थे, प्रारंभ में आरती में थे, कीर्तन में थे, बड़ा आनंद आता था, प्रारंभ में वृंदावन जाते थे, बड़ा आनंद आता था, ऐसा लगता था कि अभी लीला में प्रवेश कर गए हैं, ऐसा लगता था। और उसके बाद अगर हम अपराध नहीं करते तो कुछ अवधि के बाद हम लोग शुद्ध नाम के धरातल पर पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि हमने अपराध किए, फिर से हम लोगों को वापस उसी प्रोसेस में आना पड़ा, फिर से प्रारंभ से शुरू करना पड़ा। तो ये बात समझने की है यहां पर पांचांग भक्ति का वर्णन करते हुए। तो यहां पर विग्रह की सेवा के बारे में बताया गया है। तो ये नवदा भक्ति का जो लक्षण है, नवदा भक्ति का कह रहे हैं, भाव भक्ति का जो लक्षण है उसमें से कौन सा लक्षण जागृत होता है, कौन सा लक्षण जागृत होता है? तो यहां पर बता रहे हैं कि विरक्ति का लक्षण जागृत होता है, इनडिफरेंस यानी कि डिटैचमेंट। जैसे कि यहां पर श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि किस तरह से गोविंद जी के दर्शन करने मात्र से क्या आपको परिणाम मिलेगा, उसका फल क्या होगा, विरक्ति आएगी। तो भाव भक्ति का आभास होगा, प्राकृत भक्त में भी विरक्ति आ जाती है जब वो गोविंद देव जी का दर्शन करता है, शिव विग्रह का दर्शन करता है, या शिव विग्रह की श्रद्धा पूर्वक अगर सेवा करता है कोई भक्त तो उसमें भी विरक्ति आती है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, देहात्मक बुद्धि दूर करने के लिए, मोह दूर करने के लिए, मोह को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए, तो वो बताते हैं कि विग्रह की सेवा करके। विग्रह की सेवा करने से देहात्मक बुद्धि नष्ट होती है, विरक्ति आती है, तो ये भाव भक्ति का आभास होता है। प्राकृत भक्त को भी भाव भक्ति का आभास होता है, इस प्रकार ये वर्णन किया गया है। कुछ और बातों का हम विचार करेंगे यहां पर भी, बड़े ध्यान से सुनेगा। केवल सेवा करने से ही नहीं चलेगा, विशेष प्रीति के साथ सेवा की जरूरत है। हम जो भी शिव की सेवा करते हैं उसमें प्रीति संपर्क कितना है वे विचार करके देखना होगा।
सेवा करने से विरक्ति आती है। कितनी देर में सेवा समाप्त होगी उसी तरफ ध्यान लगा रहता है। साथ में कुछ पैसा भी है लेकिन उसको खर्च ना करने वाली चिनोरी का भोग लगा दिया, अथवा सामर्थ्य रहते हुए भी केवल जल तुलसी से पूजा कर ली। जो मेरी आत्मा के आत्मा है उनकी सामर्थ्य रहते हुए भी यदि जल तुलसी से पूजा करूं तो क्या ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उसे कभी प्रेम नहीं कर सका? कहने का अर्थ समझे आप? इसका अर्थ यह है कि आपकी क्षमता है फिर भी आप क्षमता के अनुसार सेवा नहीं कर रहे हैं, बिगड़े की सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान ने तो गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उसी का मैं ही भोग लगाता हूं। भगवान ने तो उन दरिद्रों के लिए कहा है जिनके पास और कुछ है नहीं, जिनके पास सब कुछ है तो उनको तो श्रद्धा से सब कुछ लगाना चाहिए, और जिनका नहीं है उनका उत्साह बढ़ाने के लिए गौतमीय तंत्र में दिया है तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा विकृणिते स्वम आत्मानं भक्ते तेभ्य भक्तवत्सला। अर्थात केवल एकमात्र चुल्लू जल तथा तुलसी के पत्ते श्री गोविंद के उद्देश्य से प्रदान करने पर भक्त वत्सल भगवान उसके पास अपनी आत्मा तक भेज देते हैं, यानी अपने आप को दे देते हैं। ये केवल निष्किंचन भक्तों के लिए है जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान केवल प्रीति को ही देखते हैं, वस्तु नहीं। उन्होंने दुर्योधन का राजभोग छोड़कर विदुर की पत्नी के केले के छिलके परम तृप्ति के साथ खाए थे, है कि नहीं? तो मंदिर की सेवा में की पूजा में जो लोग नियुक्त रहते हैं अधिकतर क्षेत्र में ही लंबे समय में सेवा करते रहने से क्या अब क्या समस्या आती है? विग्रह की सेवा करना ही बताया। लंबे समय से सेवा करते रहने से सेवा के प्रति सावधानी तथा आग्रह क्रमशः क्षीण हो जाता है। विग्रह की सेवा से संबंधित बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। पांचरात्रि की विधि के अनुसार आप करेंगे तो पागल हो जाएंगे एकदम से। वास्तव में अगर सात्विकता नहीं है, सत्व गुण के नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपराध करेंगे। रजोगुण वाला व्यक्ति उसको विग्रह के सामने जाना उसको बड़ा खतरा है। वह चंचल मन नहीं चलेगा, बहुत उसमें धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। और ये सब ब्राह्मणों के लक्षण हैं, यानी कि वहां पर पहले सबसे पहले प्रारंभ में घुसते ही आपको आचमन करना होगा। आचमन करने के बाद आप उसके बाद फिर घंटी बजा के बाहर ही प्रणाम करके अंदर प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद आसन शुद्धि करेंगे, फिर भूत शुद्धि करेंगे। बहुत सारे वहां पर प्रक्रिया है, प्रोसेस है विग्रह की पूजा शुरू करने से पहले। और कई मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है विग्रह का श्रृंगार करने से पहले, उनका अभिषेक करते हुए, उनको भोग लगाते हुए बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। धैर्य की आवश्यकता होती है, भोग लगाते समय 15 मिनट इंतजार करना होता है, 5 मिनट में नहीं चलेगा। इस तरह से कई सारी बातें हैं, तो ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से अपराध होता है। तब श्री विग्रह सेवा एक बोझ के रूप में मालूम पड़ता है। विग्रह की सेवा अगर बोझ बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। खासकर प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह हैं उनको अगर आप बोझ समझकर उनकी सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव मंदिर के भक्तों को होता है, खासकर मंदिर के अधिकारियों को सबसे पहले इसका प्रभाव उनको पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि डीटी वर्शिप जो है किसी भी हालत में उसका स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए। हमारी संस्था को कुछ भी हो जाए लेकिन डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड हमेशा बनाए रखना। दो चीजों पर प्रभुपाद ने जोर दिया कि इनका स्टैंडर्ड किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, एक तो डीटी वर्शिप और दूसरा पेंटिंग्स, जिसको प्रभुपाद कहते थे विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का असावधानी नहीं बरत सकते हम लोग, इसलिए इनको साक्षात भगवान मानना होगा, यानी कि साक्षात चिन्मय स्वरूप मानना होगा। ये सच्चिदानंद विग्रह हैं, ये कोई लकड़ी या मार्बल के नहीं बने हैं, केवल ये साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। अर्चायाम एव हरये, जैसे कि प्राकृत भक्तों के लिए भी कहा है श्रद्धा ये हते पूजायाम श्रद्धा ये हते, कि जो प्राकृत भक्त है उनकी श्रद्धा होनी चाहिए विग्रह की सेवा में। अगर विग्रह की सेवा में श्रद्धा नहीं है
विग्रह के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हम प्राकृत भक्त भी नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर भी नहीं पहुंचे हम लोग। अगर विग्रह के प्रति श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब हम कनिष्ठ अधिकारी नहीं है श्लोक के अनुसार, यानी कि अभी भी कई मायावाद दर्शन घुसा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर हम प्राकृत भक्त बन चुके हैं, कनिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये कृष्ण साक्षात परम भगवान है। अर्चे विष्णु शीलाधीर, ये क्या बोला गया है, अर्चे विष्णु शीलाधीर, यानी कि जो विग्रह को शिला मांगना, पत्थर मांगना केवल, या मार्बल मांगना, या लकड़ी मांगना केवल, ये घोर अपराध है, ये नारकी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि हमें नरक ले जाएगी। तो विग्रह से संबंधित कई कथाएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि विग्रह का दर्शन करने मात्र से विग्रह से बातचीत करते हैं। श्रील प्रभुपाद विग्रह से बात कर रहे थे एक बार, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या पूछ रहे थे, क्या बात कर रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उस शिष्य के स्तर के आधार पर प्रभुपाद ने उस शिष्य को बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं कहीं माया में ना गिर जाऊं, है ना, वो ये थोड़ा बताएंगे क्या प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं माया में ना गिर जाऊं, तो इस तरह से तुम भी प्रार्थना करो विग्रह के सामने जब जाते हो। इसको कहते हैं दैन्य बोधि का प्रार्थना, जैसे हम पहले समझ चुके हैं। तो ये विग्रह के सामने जब जाते हैं तो अटूट श्रद्धा लेके जाना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा चलती है जहां पर भगवान का गुणगान होता है। भगवान का गुणगान जब हम सुनते हैं, कृष्ण कथा जब सुनते हैं, तो विग्रह की प्रति श्रद्धा बढ़ती है, श्रवण करने से विग्रह की श्रद्धा बढ़ती है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे तो एक व्यक्ति आया, सीधे दर्शन करने चला गया और वहां पर प्रणाम भी नहीं किया, ना कथा में बैठा, सीधा दर्शन करने चला गया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो केवल आंखों की कसरत कर रहा है, दिस इज जस्ट आई एक्सरसाइज, है ना, यानी कि जब तक आप गुरु साधु से नहीं सुने हैं तो दर्शन भी क्या करेंगे, आप इन आंखों से क्या देखेंगे, वैष्णो के मुख से जब सुनेंगे, सुनने के बाद आप कृष्ण को देख सकते हैं। वास्तव में कृष्ण का दर्शन आंखों से नहीं होता है, कानों से होता है। कर्ण के द्वारा हमें कृष्ण को हृदय में बसाना होगा, और ऐसा हृदय जब प्रेमांजन अच्छुरित हो जाएगा, हमारी आंखें प्रेमांजन अच्छुरित हो जाएंगी, हृदय प्रेम से भर जाएगा, तो इन आंखों से हमें विग्रह का दर्शन करना होगा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए बताया है भगवद गीता में भी, अश्रद्धया हुतम धत्तम तपस्तम तपस्तपतम कृतंचन यत असदि युच्यते पार्थना च तत् प्रेत्य नो ही हा, ए पार्थ होम दान तपस्या या अन्य जो कुछ भी अश्रद्धा पूर्वक अनुष्ठित होता है वह सब कुछ असत के रूप में कथित होता है, वह सब ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही फलदायक होता है, भगवान गीता में बता रहे हैं। तो ये समझने का प्रयास करें, बिना श्रद्धा के भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। आदौ श्रद्धा, श्रील रूप गोस्वामी ने जैसे बताया, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, विग्रह के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिसमें विग्रह बोल पड़े, ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिसमें विग्रह चल पड़े। साक्षी गोपाल की कथा सुनते हैं, श्रीनाथ जी की गोपाल जी की कथा सुनते हैं, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को कैसे सपने में आए, गोपाल जी कैसे सपने में आए, उनके लिए कैसे वो चंदन में लेकर आए। तो ये सब उन भक्तों के लिए बताया जाता है जो वास्तव में जिनके हृदय में भाव जागृत हो गया है, भगवत प्रेम जागृत हो गया है। साधारणतया ऐसा होता नहीं है कि विग्रह साक्षात आप भगवान के सामने खड़े हो और विग्रह आपसे बात करें, प्राकृत अवस्था में ऐसा होता नहीं है। ये तब होता है जब हम लोग वास्तव में हमारे हृदय में भाव भक्ति जागृत हो गई। इसलिए कोई ऐसे हादसे होते भी हैं, वहां मुंह हिल रहा था या आंख हिल रही थी या वहां भोग लगाया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भक्ति रसायन सुंदर के अनुसार इसको इतना महत्व नहीं दिया गया, ना ही हमारे आचार्य लोग उसको इतना महत्व देते हैं। नहीं तो क्या होगा, समाज में केवल साहिज्यावाद साहिज्या लोग रहेंगे, रोज कोई ना कोई बोलेगा हमारे विग्रह के साथ ये हुआ, और रात को मैं उठ खड़ा हुआ विग्रह चल रहे थे, आज मैं जब प्रसाद ले रहा था तो विग्रह स्वयं आकर उन्होंने अपना उच्चिष्ट दिया मुझे। ऐसी तरह तरह की बातें होंगी और साहिज्या प्रवृत्ति जागृत होगी, सहज बना लेंगे लोग। इसलिए आचार्य लोग जब ऐसे सुनते हैं तो उस बात को वो ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और ना हमें ध्यान देना चाहिए और ना इसका प्रचार करना चाहिए। अगर वास्तव में सच है भी, मान लीजिए आपके साथ ऐसी घटना हुई भी है, तो ये प्रचार करने लायक नहीं है। कोई विशेष ऐसी अवस्था में विशेष कृपा से हो सकता है, कभी ना कभी हो जाए, रेयरली कभी हो जाए, लेकिन उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर कोई घटना ऐसी कुछ हो गई जो कि भक्ति से संबंधित नहीं है, लोग आपका उपहास करेंगे, लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी विग्रह में, लोग भक्ति को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बहुत गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा जो बताया गया जो रास्ता है उसी को ही अपनाना है, कोई नया प्रोसेस उसका प्रचार नहीं करना है, उससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। फिर हम पेपर वालों को बुला लें, मीडिया वालों को बुला लें, एक हंगामा क्रिएट करें। पिछली बार जब ऐसी घटना हुई थी तो हमसे मीडिया वाले ने क्या पूछा जानते हैं, उन्होंने पूछा आपने कोई प्रचार का नया कोई हथकंडा तो नहीं अपना लिया है, कितना बढ़िया प्रश्न है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही समाज में होता है, आज इस्कॉन ऐसा करेगा तो सारी संस्थाएं करेंगी, और वो संस्थाएं करेंगी जिनका भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, तो समाज में उत्पात बच जाएगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र के विधि बना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते, यही श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति रसाम सिंधु में। यानी कि आपकी अगर भक्ति श्रुति स्मृति पुराण और पांच रात्र की विधि के आधारित नहीं है तो ऐसा क्या होगा, ऐसी सेवा ऐसी तथाकथित भक्ति जो है समाज में केवल उत्पात बचाती है, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, उत्पात मचाए। इसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी लिखा है पढ़ने के लिए, प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है पढ़ने के लिए, रखने के लिए नहीं। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भक्ति कैसे की जाए, सेवा कैसे की जाए, और श्रील प्रभुपाद ने डीटी वर्षी के स्टैंडर्ड समेत दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड स्टैंडर्ड भी दिया है, सेकंड ग्रेड स्टैंडर्ड भी दिया है, थर्ड ग्रेड स्टैंडर्ड भी दिया है, लेकिन कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कई बार लोग लड्डू गोपाल रखते हैं और उसके अनेकों अनेकों बातचीत होती है उसके बारे में, तो लड्डू गोपाल को टॉफी खिला रहे हैं, लड्डू गोपाल को चॉकलेट खिला रहे हैं, लड्डू गोपाल बाल रूप में है इसलिए उनको ये मत खिलाओ वो मत खिलाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये बिल्कुल 100% साहिज्यवाद है, बिल्कुल साहिज्यजम है, भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक अनर्थों से निवृत्ति नहीं हुए हैं और बात कर रहे हैं भाव भक्ति की, ये सब भाव भक्ति के लेवल की बातें हैं। श्रील गौर गोविंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे, जब वो भुवनेश्वर मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने भक्तों को बुलाया, उन्होंने कहा कि आज कृष्ण बलराम को केला क्यों खिलाया तुम लोगों ने, वो ठंड में वो केला खा नहीं पा रहे हैं, गले से उतर नहीं रहा है, ऐसा श्रील गौर गोविंद महाराज कह सकते थे। उसकी नकल नहीं की जा सकती, उन्नत वैष्णवों की नकल नहीं की जाती, नकल ही करनी है तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा वैसे करें कि मैं कहीं माया में ना गिर जाऊं, ये ज्यादा हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। बहुत से फिर श्री विग्रह सेवा में लगे रहकर सोचते हैं कि मेरा सादर भजन कुछ भी नहीं हो रहा है, इस सेवा कार्य में ही दिन बीता जा रहा है, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, कोई भजन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार सोचने से सेवा के प्रति अनादर की बुद्धि चली आती है, इस प्रकार की धारणा भ्रांत है। एक अंगे सादे किंबा सादे बहु अंग, निष्ठा होले उपजे प्रेमेर तरंग, हमारा भजन ही सेवा है,
यानी कि सेवा ही भजन है, जो सेवा गुरु ने दिया है वही भजन है हमारे लिए, उसी को भजन क्रिया कहते हैं, उसी भजन क्रिया से अनर्थों की निवृत्ति होगी। लेकिन कई लोगों का भ्रम रहता है कि वृंदावन जाएंगे और वहां भजन करेंगे हम, और अधिकांश ऐसे लोग जो साधक हैं तथाकथित वो सो रहे होते हैं जबकि समय, या खा रहे होते हैं, अधिकांश समय उनका सोने में बीतता है और बोलते हैं हम भजन कर रहे हैं, कुटिया में बैठे भजन कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे हैं, और देखा होगा आराम से लेटे हुए हैं, खराटे ले रहे हैं, या एक लंबी लाइन में खड़े हैं, किस लिए? मधुकरी कर रहे हैं जी, हम इतना बड़ा लोटा लेके खड़े हुए। प्रभुपाद कहते हैं श्रील सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन मधुकरी करते थे, परमहंसों के लिए मधुकरी होती है, लेकिन आजकल कई भिखारी बन गए हैं लोग, भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं लोग वृंदावन में जाकर। प्रभुपाद लिख रहे मधुकरी तो परमहंसों के लिए है। तो कहने का अर्थ यह है कि विग्रह की सेवा को हमें बड़ा सस्ता नहीं बनाना है, और जो विग्रह नहीं रख, विग्रह की सेवा करके विग्रह स्थापना करने के बाद स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर सकते तो विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए उनको, उनको डीटी नहीं रखना चाहिए घर पे, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। केवल थोड़ा सा यश कमाने के लिए कि हमारे घर में भी विग्रह है, आइए दर्शन करिए, तो इसलिए हमें विग्रह नहीं रखना चाहिए। चित्र रखिए भगवान का, चित्र से ऑल्टर बनाइए, जितनी क्षमता है उसके अनुसार सेवा करें। इसलिए हम देखा कि कई बार हमारे गुरु महाराज भी इन बातों पर इतना जोर नहीं देते हैं, आपको विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, घर पे विग्रह रखो, घर पे विग्रह रखो, महाराज कभी इसका प्रचार नहीं करते हैं। कोई खासकर पूछने आता है तो महाराज कई बार उसकी अनुमति दे देते हैं। तो इसलिए क्योंकि जब विग्रह की सेवा करते हैं तो स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना जरूरी है, भले आप मंदिर का स्टैंडर्ड मेंटेन ना कर पाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप स्थापित कर रहे हैं उसको आपको बनाए रखना होगा, और मनगढ़ंत तरीके से नहीं करना है, गुरु और वैष्णव से परामर्श कर विग्रह की सेवा करनी होगी। और नहीं कर सकते तो पहले चित्रपट की सेवा करें, राधा कृष्ण के चित्र की सेवा करें, वो सेवा करके देखें कि कितने दिन आप चित्र को उठा रहे हैं, उनकी धूल साफ कर रहे हैं, कितनी बार आप भोग लगा पा रहे हैं, कितनी बार आप आरती कर पा रहे हैं, ये आप चित्र के साथ करके देखिए, कितनी बार आप ऑल्टर साफ कर पा रहे हैं। अगर ये आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो विग्रह की सेवा कैसे करेंगे, जब उनका अभिषेक करना पड़ेगा, जब उनका श्रृंगार करना पड़ेगा, जब उनका गुणगान करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को हमें धोखा नहीं देना है। फिर बाद में यही होगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है, बोझ सम लगता है विग्रह की सेवा, फिर बोझ लगने लगती है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना हमें ड्यूटी वर्शिप का। और कोई इसके संबंध कोई प्रश्न है विग्रह की सेवा से लेकर? उस समय हम लोग स्टैंडर्ड बनाए, एक समय की सेवा करें, एक समय आरती का स्टैंडर्ड रखें, अगर दो समय नहीं कर सकते तो। अभी इस समय अगर देखा जाए जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है, अगर एक्चुअली अगर आप वास्तव में डीटी रखना चाहते हैं तो ये समय नहीं है डीटी रखने का, वास्तव में देखा जाए तो अभी इस समय, खासकर अगर आप युवावस्था में हैं, इस समय ग्रंथों का गहन अध्ययन करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए और शारीरिक सेवा में लगना चाहिए, फिजिकल सर्विस में लगना चाहिए जो गुरु ने दिया है। जब आपकी उम्र बीतने लगेगी, जब आप ज्यादा भ्रमण नहीं कर सकते हैं, उस समय आप जानते हैं कि अब कब आप भ्रमण नहीं कर पाएंगे और गुरु भी आपको ऐसी आज्ञा नहीं देंगे, तब आप रखिए विग्रह, तब विग्रह की सेवा करने में आपको आनंद आएगा, नाम में रुचि जागृत होगी, तब आपको बोझ नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द स्पिरिचुअल मास्टर एंगेजेस डिसाइपल अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल नेचर, साइकोफिजिकल नेचर देखना चाहिए। हाँ,
आजकल एक फैशन बन गया है, सब जगह डीटी इंस्टॉल करो, सब जगह डीटी इंस्टॉल करो, चीप बन जाता है वो। चित्र रखिए आप भगवान का, उसकी सेवा आप करके देखिए पहले कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे आप। एक जब उम्र आपकी जब बीत जाएगी और केवल अपने भजन का समय रह जाएगा, उससे आप रखिए, उसमें शिला भी रखिए आप, विग्रह की सेवा भी करिए गुरु से आज्ञा लेकर। ऐसे कुछ भक्त हैं जो कह रहे हैं कि जो बहुत समझ रहे हैं और फिर भी विग्रह की सेवा में लगे हैं, ये न किन प्रकार हैं, वो ऐसे लग गए, फंस गए, फंस चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है, वो फंस चुके हैं जो लोग विग्रह की सेवा में, उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे उससे निकले बच के? तो ऐसे विग्रह को आप किसी और भक्त को दे दें जो श्रद्धापूर्वक सेवा कर सके। बहुत समझ कर अगर आप कोई भी सेवा लेंगे वो थर्ड क्लास सर्विस माना जाता है। जैसे चार प्रकार के शिष्य बताए गए हैं, पहले स्टेज का शिष्य वो है जो बिना बताए सेवा करता है, वो जानता है गुरु की इच्छा क्या है। दूसरा लेवल का शिष्य वो है जो बताने पर करता है। तीसरे लेवल का शिष्य वो है जो बोझ समझ के करता है। और चौथे लेवल का कोई शिष्य नहीं होता है। उनके लिए सुझाव दिया है कि उनको तो मल मूत्र की तरह त्याग देना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। इस बात का बड़ा ध्यान रखें हम लोग कि विग्रह की सेवा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको अगर हम लोग गंभीरता से लेना चाहते हैं तो गुरु से परामर्श करके, गुरु से आज्ञा लेकर ही हमें इसको करना चाहिए। अन्यथा हमें इस सब है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए और प्रचार के कार्य में लगना चाहिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, गोपाल जी की सेवा करते हैं। श्रीपाल माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की सेवा की, हमारा संप्रदाय है। बाल गोपाल हो या किशोर रूप हो कृष्ण का, दोनों ही कृष्ण ही तो हैं। उस समय भी वो भगवान है कि नहीं? ऐसा थोड़ा है कि जो है पूता का वध करने के लिए कृष्ण को विराट रूप धारण करना पड़ा। कृष्ण को तो कभी विराट रूप धारण करना ही नहीं पड़ा किसी को मारने के लिए। वो जिस रूप में थे उसी रूप में वो मारे, आपने देखा ना? नहीं, ये थोड़ा कि पूतना है और एकदम से विकराल रूप धारण किया उन्होंने पूतना के साथ। पूतना को तो वही मार दिया जहां पे थे। वो है कृष्ण। पहले हम लोग तत्व को समझें, कृष्ण है कौन, भगवान कौन है। इसलिए सबसे पहले भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, सीधा भाव में पहुंच जाता। इसलिए इस प्रकार की कंफ्यूजन होते हैं। और हाँ वो एक ऐसी है, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग टेम्पल क्लीनिंग करें वो ज्यादा अच्छा है। विग्रह की अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो विग्रह से संबंधित जो और भी वस्तुएं हैं उनको हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं। तदीय वस्तु, बर्तन धोना, मंदिर साफ करना, मंदिर मार्जन करना, मंदिर के भवन, जो मंदिर कक्ष है यानी कि राधा पार्षदी के सामने जो कक्ष है उसकी सफाई करना, वो सब अर्चक विग्रह की सेवा में आ जाएगा। उनकी परिक्रमा करें, उनके लिए कीर्तन करें, है ना, उनके लिए दीपदान बाहर से आप कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा करें आप, उनका गुणगान करें, ये सब भी विग्रह की सेवा में आ जाएगा। ये आवश्यक थोड़ा है कि आप ऑल्टर में जाएं, हम सब घर पे भी आप ये सब कर सकते हैं, चित्र रख के, ठीक है। हाँ फेथ तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर लोग भी, फिर फेथ इतना बढ़ जाता है, लोगों का फेथ श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि उनके साथ भी ऐसी घटना होती है। ये समस्या है, सही बात आप कह रहे हैं कि श्रद्धा बढ़ जाती है ऐसी घटना सुनने से। अरे घटना ही सुना है तो श्रीपाल माधवेंद्रपुरी की घटना सुनो ना, है ना। घटना ही सुना है तो महाप्रभु की घटना सुनो। चैतन्य चरितामृत में तो घटना ही घटना है, श्रीमद् भागवत में घटना ही घटना है, वो सब घटनाओं को छोड़कर आजकल की घटनाओं को इतना महत्व दे रहे हैं आप, पूरी पुरानी घटनाएं भूल गए आप। जो शास्त्र में है, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा प्रमाणित घटनाएं हैं, उनका श्रवण करके श्रद्धा बढ़ाए ना हम लोग। ऐसी घटनाओं को गुरु कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, आचार्य लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, केवल आप और मैं महत्व दे रहे हैं, उसका क्या फायदा। श्रीपाल माधवेंद्रपुरी की घटना को पूरा संसार महत्व दे रहा है, पूरी परंपरा उसको महत्व दे रही है, पूरा संप्रदाय उसको महत्व दे रहा है। ऐसी घटना को सुनकर भक्ति आगे बढ़ेगी, श्रद्धा आगे बढ़ेगी। ये तो लौकिक श्रद्धा हो गई है कि नहीं, इस बात को समझना अच्छी तरह से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, भागवत श्रवण। भागवत वैसे यहां पर तो साधु संघ के बारे में लिखा है, लेकिन हम भागवत श्रवण कर लेते हैं अभी सबसे पहले। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत, हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो वेदांत सूत्र की व्याख्या है, स्वाभाविक व्याख्या है। श्रील व्यासदेव ने जो वेदांत सूत्र है जन्मादि यस्य अतः, उसे की विस्तृत व्याख्या की है 18,000 श्लोकों में। एक सूत्र को 18,000 श्लोकों में विस्तारित किया है, जन्मादि यस्य अतः। जन्मादि यस्य अतः का मतलब है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है भगवान श्री कृष्ण। इसको समझाने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात की स्थापना करने के लिए श्रील व्यास देव ने 18,000 श्लोक जो है उसको उसकी रचना की है। ये नेचुरल कमेंट्री है और इसके बाद और किसी कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है, ये कमेंट्री अपने आप में पर्याप्त है। ये नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवत। तो ये जो श्रीमद् भागवत का श्रवण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यहां पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन पारमहंसयम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्श्रृणवन सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यन नरः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अर्थ क्या है। ये जो श्रीमद् भागवत है इसको अमल पुराण बताया गया है। भागवत के द्वादश स्कंद में 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये वर्णन मिलता है और वैष्णवों को ये बहुत प्रिय है। वैष्णव बहुत आनंद लेते हैं श्रीमद् भागवत का जब वो अध्ययन करते हैं। जैसी जहां भागवत कथा होती है वैष्णव लोग वहां जाते हैं सुनने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि ये वास्तव में क्या है, गलितम फलम है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य सुमतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावुका। ये वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो पका हुआ फल का मतलब यह है कि निचोड़ है। श्रील व्यासदेव ने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद श्रीमद् भागवत की रचना की, महाभारत लिखने के बाद श्रीमद् भागवत की रचना की, क्योंकि तब भी वो खुश नहीं थे। इसे नारद जी जब पहुंचे बद्री का आश्रम तो उन्होंने देखा श्रील व्यासदेव बड़े दुखी होकर बैठे हैं। तो नारद जी ने क्या बोला, लगता यह है कि आपने शुद्ध भक्ति का, कृष्ण की भक्ति का, यानी कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति है उसका विस्तार से आपने वर्णन नहीं किया है। आपने अन्य पुराणों में बहुत कुछ लिख छोड़ा है, धर्म अर्थ का मोक्ष की भी व्याख्या आपने कर दी है, इसलिए आप ऐसे अमल पुराण की आप रचना करें, संकलन करें। तो नारद जी आकर उन्होंने बताया कि उनका दोष क्या है। गुरु का यही कर्तव्य होता है कि वो शिष्य में दोष निकाले। व्यासदेव जो है स्वयं साक्ते वे अवतार हैं भगवान के, लेकिन फिर भी नारद जी आके उनको गलती बता रहे हैं क्योंकि वो उनके गुरु हैं। इसलिए नारद जी आके बता रहे हैं। नारद जी का अर्थ, नारद का अर्थ यही है जो लोगों को भक्ति देने वाले हैं। नारद यानी कि नर को भक्ति देने वाले, उनको नारद कहते हैं। तो ये भक्ति देने वाले हैं और वो बता रहे हैं कि आपने कृष्ण भक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं किया है। क्या बता रहे हैं, जो इसका अध्ययन करेगा वो मुक्ति को प्राप्त होगा। जो कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, वैराग्य के द्वारा प्राप्त होता है या भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, जो इसका श्रवण करेगा, अध्ययन करेगा भागवत का, और फिर इसकी जो चर्चा करेगा और ध्यान लगाएगा, जो उसे सुना है और अध्ययन किया है, निश्चित रूप से इस भक्ति कार्य से वो मुक्त हो जाएगा। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। तो आगे ये भी बताया जा रहा है, गरुड़ पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया जा रहा है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष्य रूपस्व वेदार्थ परिभ्रमिता। तो चैतन्य चरितामृत में, क्षमा करिए, ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है और साथ में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है, ये ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है, और महाभारत का जो उद्देश्य है उसका वर्णन प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में, ये तीनों श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। और गायत्री मंत्र की व्याख्या तो श्रील व्यास जी ने पहले श्लोक में ही कर दी है, जो पहला श्लोक है भागवत का वो गायत्री मंत्र की व्याख्या है, सत्यम परम धीमहि। तो इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी भागवत के बारे में, ये आप सुनने का प्रयास करें। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व श्री भागवत तत्व रस को लीला प्रचारे कृष्ण तुल्य भागवत जाना इला संसारे। तो ये चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसका प्रचार किया, भक्ति तत्व यानी कि भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, लीला तत्व, इन सब का श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रचार किया, और ये सब बातें जो है श्रीमद् भागवत में पाई जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखलाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कृष्ण तुल्य भागवत जाने इला संसारे, ये बताया कृष्ण तुल्य भागवत कि कृष्ण में और भागवत पुस्तक में कोई अंतर नहीं है। जैसे पहले भी हमने बताया था कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान धर्मादि भी सहा कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्को विदुनोदिता। कृष्ण चले गए, धाम चले गए ज्ञान और धर्म के साथ, लेकिन पीछे ये श्रीमद् भागवत महापुराण छोड़ गए हैं जो कि सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है, जो अंधकार को दूर कर रहा है, कलयुग के अंधकार को दूर कर रहा है प्रकाशित होकर। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु ने भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को क्या बोला, महाप्रभु के बड़े निजी निकटतम पार्षद थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, छह गोस्वामियों में से, इनको खासकर उन्होंने सेवा दी थी भागवत पाठ करने के लिए। तो राधा गोविंद देव जी के मंदिर में प्रत्येक दिन वो भागवत पाठ किया करते थे, और जब वो भागवत का पाठ करते थे अलग अलग सुरों में गाते थे श्लोकों को, तो जब उनकी आंखों से आंसू भी निकलते थे या बरसात भी होती थी, बरसात जब होती थी तो उनके ऊपर पानी नहीं गिरता था, और कई बार तो आंसू से जो है वो भागवत की जो पांडुलिपियां हैं वो गीली हो जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा, आमार आज्ञा रघुनाथ जहा वृंदावने तहा जाइया रहा रूप सनातन स्थाने भागवत पढ़ा सदा लोह कृष्ण नाम अचिरे कोरिबे न कृपा कृष्ण भगवान। मेरे प्रिय रघुनाथ उपदेशों का पालन करो, जाओ वृंदावन, वहां पर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के आश्रम में रहो, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना वहां पर और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करना। ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इस तरह से महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को ये शिक्षा दी। रूप गोसाई रे सभा करेने भागवत पठन भागवत पढ़ीते प्रेम औला तार मन। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से अनुमति ली और वृंदावन गए, और वहां पर उन्होंने शिल रूप गोस्वामी से का आश्रय लिया, सनातन गोस्वामी का आश्रय लिया। और जब भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद भागवत का श्रवण करते या आप कथा करते या उसका पाठ करते शिल रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की सभा में, तो क्या होता, उनके उनका भाव जागृत हो जाता, भाववेश में आ जाता। एक दफा तो ये बताया गया है कि जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे तो शिल रूप गोस्वामी श्रवण कर रहे थे। भागवत श्रवण कैसे किया जाता है, क्या स्टैंडर्ड है, ये आप सुनिए। शिल रूप गोस्वामी जब श्रवण कर रहे थे तो अचानक भाववेश में आ गए, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग क्रंदन कर रहे थे, अलग अलग भाव जागृत हो रहे थे सबके कथा के दौरान। लेकिन शिल रूप गोस्वामी स्तब्ध हो गए, बिल्कुल स्तब्ध हो गए, और सब लोग सोचने लगे क्या हुआ शिल रूप गोस्वामी को। तो कुछ भक्त लोग पास जाके देखने लगे, तो किसी ने जाके पास जाके देखा, उनका शरीर पूरा तप रहा था शिल रूप गोस्वामी का, और जब उनके नाक के पास रुई रखा तो रुई जलने लगी। ये था शिल रूप गोस्वामी की श्रवण करने का स्टैंडर्ड। लेकिन हम लोग जब श्रवण करते हैं तो उस समय क्या होता है, सारी अग्नि शांत हो जाती है और हम सब निद्रा लोक में प्रवेश करते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है। लेकिन साथ में शिल रूप गोस्वामी ने और विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने एक बात बताई है, बड़ा ध्यान से सुनेगा क्या बता रहे हैं। श्रीमद भागवत अर्थम आस्वादो रसिकई सहा, यहां समस्या है। श्रीमद भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकई सहा, कि किसी रसिक वैष्णव के सानिध्य में रहकर श्रीमद भागवत का श्रवण करो तो पूरा लाभ मिलेगा। आप देखिए क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वो रसिक वैष्णव जो है भागवत के मर्म को समझ चुका है, वो रसों का आस्वादन कर रहा है, वो जानता है कि श्रीमद् भागवत का मर्म क्या है, वो श्रीमद् भागवत का निचोड़ क्या है, इस बात को वो अच्छी तरह समझ चुका है, उसकी अनुभूति कर चुका है। जैसे समझ लीजिए एक गांव से एक व्यक्ति आया और उसने बताया आपको कि गांव में बड़ी दुर्घटना हुई है, किसी औरत के बारे में बताया, किसी माता की स्त्री के बारे में बताया कि उसका बच्चा मर गया है, उसकी संतान मर गई है, इसलिए गांव के और लोग भी बड़े दुखी हैं, रिश्तेदार भी बड़े दुखी हैं, सब गांव वाले भी इकट्ठे हो गए हैं और बेचारे रो रही है क्योंकि अकेली है वो, और उसका पति भी कोई नहीं है और बच्चा मर गया, बच्चा केवल 2 साल का था, ये कहके वो चला गया। और ये आदमी जब गया गांव, गए गांव जाके देखा, उसके घर गए तो उससे जाके मिले, उस स्त्री से जाके जब मिले, उससे जब वर्णन किया अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बच्चा मर गया है, कहाँ चला गया, और जब वो रोने लगी, जिस भाव से वो वर्णन करने लगी, वो सुनाने लगी, अंतर बहुत था। अंतर हुआ कि नहीं? एक तो मैंने कहा कि हाँ वो रो रही है, बच्चा उसका मर गया है, और दूसरा वो गांव जाकर उसी से सुनता है, उसी औरत से सुनता है, वो कहती है कि हाँ मेरा बच्चा मर गया। अंतर है कि नहीं? एक व्यक्ति कलकत्ता से होकर आया है, वो कलकत्ता के बारे में बताता है, दूसरा किताब पढ़कर बताता है कलकत्ता के बारे में, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक गोलोक वृंदावन से आया है, दूसरा करोड़ बाग से आया है, दोनों में अंतर है कि नहीं कथा में? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताए अभी, हम बता दें, चलिए इसके बारे में आगे बताएं, थोड़ा सा इसको ब्रेक लगाते हैं यहां पे, बता दें यहां तो। तो शिल जी गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति संदर्भ में, और ये उन्होंने ब्रह्म भरत पुराण से लिया है, बड़े ध्यान से सुनिए शिल जी गोस्वामी क्या कहते हैं, ये और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है। वक्ता सरागो नीरागो द्विविदा परिकीर्तिता सरागो लोलुपहा कामी तदुक्तम हृत न संस्पृशेत उपदेशम करोति एव न परीक्षा करोति च अपरीक्ष्य उपदिष्टम यत लोक नाशया तद भवे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, वक्ता सराव और निराग दो प्रकार के कहे जाते हैं। सराग का मतलब माइक वस्तु में आसक्त, सराग लोलुप एवं कामी होने के कारण उसकी कथा हृदय को स्पर्श नहीं करती है, उपदेश करता है लेकिन अपने जीवन में आचरण के द्वारा उसकी परीक्षा नहीं करता है। इस प्रकार के आचरणहीन वक्ता का उपदेश लोग नाश का कारण होता है। सच बात तो बोलनी पड़ेगी ना पहले, फिर एडजस्टमेंट करेंगे। इसलिए श्रील विश्वनाथ श्री ठाकुर पाद ने कहा है श्रीमद् भागवत अर्थ, क्या बोला है? श्रीमद् भागवत अर्थ, श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकई सहा, रसिकई सहा, अर्थात जिन्होंने भागवत रस का वास्तव में आस्वादन किया हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। जिन्होंने स्वयं उस रस को नहीं छका है, केवल भाई के द्वारा उस रस का बखान करने पर श्रोता का कोई विशेष उपकार नहीं होता है, विशेष उपकार नहीं होता है। तो यहां पर दो बातें बताई गई, निराग वक्ता और सराग वक्ता। निराग वक्ता का मतलब क्या है? निराग का मतलब है जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, मोह माया के प्रति आसक्ति नहीं है, उसको कहते हैं निराग वक्ता। जिसके हृदय में क्या है? जिसके हृदय में केवल कृष्ण का चिंतन है, जो इन रसों का आस्वादन कर रहा है, जिसकी वो अनुभूति कर चुका है, उसको कहते हैं निराग वक्ता। और सराग वक्ता का मतलब है भौतिक कामनाओं से युक्त, मोह माया से युक्त, वो भी कृष्ण कथा कर रहा है, वो भी अथारू प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वो हृदय से अभी शुद्ध नहीं है, उसका मन अभी पवित्र नहीं है। तो दोनों में अंतर होगा या नहीं? प्रश्न आपसे पूछते हैं, प्रभुपाद बताते हैं आत्मा और शरीर के बारे में, प्रभुपाद बताते हैं मनुष्य और पशु में क्या भेद है, और हम वही बात बताते हैं, दोनों में अंतर होगा कि नहीं, बताइए। बताइए। नहीं नहीं, पहले हमने जो पूछा है वो बताइए, एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है हमने, एडजस्टमेंट हम करते हैं। नहीं नहीं, हमने आपसे एडजस्टमेंट के लिए नहीं पूछा, फिर से आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर हो या नहीं होगा, जब प्रभुपाद भागवत कथा करेंगे और हमें से कोई कथा करेगा तो उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा करेंगे, हम कथा करेंगे, अंतर होगा या नहीं होगा? तो ये बात हम सब पूछ रहे हैं। आप पहले इस बात को समझ लीजिए, शास्त्र सिद्धांत को पहले समझिए अच्छी तरह से, अपवाद मत खड़ा करिए पहले। हमारी बीमारी यह है कि पहले से हम अपवाद खड़ा कर देते हैं, और अपवाद खड़ा करने के कारण क्या होता है, शास्त्र सिद्धांत को भूल जाते हैं, और शास्त्र सिद्धांत को भूलने पर जब ऐसा अवसर प्राप्त होता है उस अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हम इस बात को दूर कर रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? जब कभी आपको अवसर मिलेगा ऐसे निराग वक्ता से सुनने का आपको अवसर मिलेगा तो आप सोचेंगे जैसे क्लास चल रहा है और वैसे ही चल रहा है, आज ये दे रहे थे आज वो महाराज दे रहे हैं, या वो भक्त दे रहे हैं, तो भेद नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए ये जरूरी है सिद्धांत को समझना, तो इसको इसी तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जब अपवाद की बात आती है तो उसमें यह समझना है कि प्रभुपाद की आज्ञा है, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि इस पृथ्वी में आज पूछा जाए कितने रसिक वैष्णव हैं, और आगे चलकर कली काल में कितने रसिक वैष्णव होंगे, पहले तो आप ढूंढिए उन रसिक वैष्णवों को, फिर तो भागवत कथा होगी, या भागवतम क्लास बंद कर दिया जाए कि जब रसिक वैष्णव आएंगे तभी क्लास करेंगे हम, ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकल है क्या ये? इसलिए प्रभुपाद ने ये शक्ति दी है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भी कहा कि आप भागवतम क्लास दो, और प्रभुपाद खुद सुनते थे, सुनने के बाद उनको करेक्ट करते थे, उनको ठीक करते थे। हाँ ये जरूर है कथा के बाद वहां पर ये जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया, इसलिए हमने पहले वो श्लोक लिया था, उस श्लोक में जो बताया गया था बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई थी। तत्श्रृण्वन सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। तीन बातों का ध्यान हमें देखना है भागवत श्रवण में। पहले तो भागवत श्रवण करना हुआ तो ये तो बात स्पष्ट होगी क्योंकि प्रभुपाद की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा है, वैष्णव की आज्ञा है, इसलिए हम तो भागवत कथा सुनेंगे। कोई भी कथा करे, कोई भी प्रवचन दे, बस ये बात जरूर है कि उसको दोहराना होगा जो प्रभुपाद ने बताया है, उसी बात को आगे बढ़ाना है। पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है, अपने कोई अपना मनगढ़ंत बात कोई प्रस्तुत नहीं करनी है, या किसी से कोई दुश्मनी है वो कथा के द्वारा नहीं निकालना है। ये सब पे तो प्रतिबंध लगेगा। बाकी मन में इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, अनर्थ भरे पड़े हैं, उसको क्षमा किया जा सकता है। कोई जन्मजात परमहंस नहीं है, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता सबको है, लेकिन प्रतिबंध इस पे निश्चित रूप से लगाया जाएगा अगर वो यथारूप देव ज्ञान को प्रस्तुत नहीं करेगा। और साथ में प्रतिबंध लगाया जाएगा अगर वो व्यक्तिगत अपनी पर्सनल भड़ास निकालेगा, तो ये बहुत खतरनाक। अगर कोई गुरु के पद पे नहीं है, अधिकारी के पद पर नहीं है, तो उसको अगर कहता है तो वो हानिकारक हो सकता है। कि अधिकारी कोई अगर है, कोई पद है जिसको दिया है, गुरु ने अधिकार दिया है, या स्वयं गुरु कथा करते हैं, तो शिक्षा हेतु कई बार वो कथा के दौरान बताते भी हैं कि गलती क्या है हमारे। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु हमारा दोष निकाल रहे हैं। गुरु का कार्य ही है दोष निकालना। प्रभुपाद ने जैसे बताया, इट्स ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड फॉल्ट इन द डिसाइपल। उनकी सेवा यही है, तो सेवा के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो द्वेष के कारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनको अधिकार नहीं दिया गया है, वो अगर कथा करते हैं, वो अगर व्यक्तिगत भड़ास निकालते हैं, वो दिखता है, लोग समझ जाते हैं, है ना, ये मेरे बारे में कह रहा है, और सब लोग जो है उसकी ओर देखते हैं, ये तो प्रभु जी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भागवत कक्षा नहीं होती है फिर, है ना, तो वो फिर अच्छा नहीं है, उससे अनर्थ बढ़ते हैं, अपराध होता है भागवत के प्रति, व्यास आसन के प्रति, व्यास देव जी के प्रति, उस कथावाचक के प्रति, श्रोताओं के प्रति अपराध होता है। हाँ, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो भागवतम क्लास दे रहे हैं, इसलिए हम बताया श्रृण्वन सुपठन, सुपठन उसका अध्ययन करना, अध्ययन करना श्रवण करना, उसके बाद क्या करना चाहिए यहां बताया गया है। यहां पर बताया गया है श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, उसको कहते हैं विचारण, मनन करना। सुनने के बाद प्रसाद हॉल में चले गए, महाप्रसाद गोविंद जैसे ही बोला सारा श्लोक भूल गए, तात्पर्य के साथ, तात्पर्य के साथ सारा अनुवाद भूल गए, श्लोक भी भूल गए, हमें पता ही नहीं था कि हमने क्या सुना था आज, क्योंकि सामने इतना स्वादिष्ट महाप्रसाद जो है, कौन याद रखेगा उस श्लोक को, कौन याद रखेगा वो घड़ी को जिससे मुझे निद्रा आई थी, मैं सो गया था, तो विचार क्या करूं फिर, जब इतनी नींद आई मुझे क्लास में, तो किस बात का विचार करूं, इस बात का विचार करूं कि मुझे निद्रा आई, इसलिए मुझे इस विचार करने की सभा में मत बुलाना, जो जागे हुए थे उनके साथ विचार किया जाए। तो मनन तो वही करेंगे जिन्होंने श्रवण किया होगा ध्यान पूर्वक, जो बैठे होंगे आराम से ध्यान से सुन रहे होंगे, जिन्होंने उतारा होगा कुछ ध्यान से सुना होगा, और उसके बाद वो विचार करें। विचार करने के बाद यहां पर बताया है कि उसको जीवन में डालने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जब तीन कार्य होते हैं तो श्रीमद् भागवत श्रवण का पूरा लाभ मिलता है, नहीं तो श्रवण अपने आप में पूरा नहीं होता है। इसलिए सारे श्रोता एक स्तर के नहीं होते हैं, सारे श्रोता एक स्तर के नहीं होते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा ऋषि मुनि आए थे नैमिषारण्य में, जब शौनक ऋषि और अन्य ऋषि आए थे, सूत गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे, तो पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए थे, लेकिन सारे भक्त नहीं थे, कुछ उसमें ज्ञानी थे, कुछ उसमें योगी थे, सारे वहां पर भागवत पुरुष नहीं थे वहां पर, लेकिन सूत गोस्वामी की कृपा से, इसी तरह से पहले भी श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा से जो श्रोता थे वो धीरे धीरे वो सब आगे बढ़े। सब एक स्तर पर नहीं होते हैं श्रोता। इसलिए श्लोक को कितना कौन पकड़ रहा है, किस स्तर पर पकड़ रहा है, वो निर्भर करता है ना। जो सत्वगुण में है वो भागवत को सत्वगुण पे स्वीकार करता है, सत्वगुण के स्तर पर वो समझ आता है। और रजोगुण में है वो रजोगुण में स्वीकार करता है, तमोगुण में है वो तो सुनता ही नहीं। अध्ययन भी इस प्रकार से होता है, तीन प्रकार से अध्ययन होता है भागवत का या कोई भी ग्रंथ का। सत्वगुण में क्या होता है कि एक एक श्लोक की व्याख्या समझने का प्रयास करता है, बड़ी गंभीरता से उसको समझता है और साथ साथ नोट्स भी उतारता है और प्रश्न पूछता है और शंका होने पर किसी से पूछने जाता है, सद्धर्म परीक्षा जिसको कहते हैं। बड़े ध्यान से उसका वो अध्ययन करता है, एक एक श्लोक के अर्थ को समझता है, अनुवाद को ध्यान से पढ़ता है, तात्पर्य को ध्यान से पढ़ता है और जहां नहीं समझ पाता है उसको हाईलाइट करता है और ना समझ पाना उसको उतारता है, विचार करता है, फिर और जाकर किसी से सुनता है, समझने का प्रयास करता है। तो वो सात्विक अध्ययन होता है। रास्तिक अध्ययन होता है, मैंने सारी किताबें खत्म कर दी प्रभुपाद की, वास्तव में खत्म हो गई, आपका अध्ययन समाप्त हो गया क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मुझे याद नहीं है, ये मत पूछना कि क्या है इस ग्रंथ में, मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन। तो होता है वो रास्तिक अध्ययन। रास्तिक अध्ययन का मतलब होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय मन जो है दसों दिशाओं में भागता है आपका, एक ही पेज में दो घंटे बैठे हुए हैं, वो पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है? आपने जैसे पढ़ा इन द 25th चैप्टर ऑफ द मध्य लीला, वहीं पे रुक गए आप और आपका मन जो है दफ्तर में चला गया, घर में चला गया, कि परिवार में क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, कुछ देर आप सोच रहे हैं, मन वहां भाग रहा है, कुछ समय की याद बाद याद, अरे मैं तो यहां पढ़ रहा था, एक मिनट, फिर से आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा करते करते दो घंटे बीत जाते हैं, एक ही पेज आपने कवर किया अभी तक। साधा चार्ट में लिखा होता दो घंटे में अध्ययन करते हैं रोज, तो ये भी आप देखना पड़ेगा कि कितने पेज आपने पढ़े, कितने ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा, या एक ही लाइन में अटके रहे दो घंटे तक। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा की तो 7 दिन और 7 रात पे उन्होंने पूरे भागवत को सुनाया, परीक्षित महाराज सुना है कि नहीं, और तामसिक अध्ययन किया है। तामसिक अध्ययन का मतलब है पांचांग दंडवत लगाना श्रीमद भागवत को खोलते ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके बाद एकदम से शांत वातावरण, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वक्ता और श्रोता दोनों ही सो गए। अधिकांश वक्ता तो नहीं सोता है लेकिन अगर स्वाध्याय कर रहे हो तो इस देखा गया है। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे भक्त भी कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता, हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता, हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है। लेकिन वास्तव में उनको जब पढ़ते हुए देखने जाएं, वो कमरे में जब पढ़ रहे होते हैं तो उनका शीश जो है वो पूरा झुका होता है, वो भागवत को प्रणाम कर रहे होते हैं। फिर वो दूसरे दिन आते हैं, प्रभु जी पढ़ने को समय नहीं मिलता है, पढ़ने को समय नहीं मिलता है। पढ़ने को बहुत समय मिलता है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि भागवत पढ़ने के लिए पात्रता नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये भागवत अभी दवाई का कार्य कर रही है और जैसे हम दवाई लेते हैं तो बहुत हैवी डोज होता है, तो वो क्या होता है इसको हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, सारा तमोगुण बाहर निकल के आता है। जैसे ही हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो सारा तमोगुण बाहर निकलता है, सर के ऊपर आके चढ़ जाता है और एकदम निद्रा आती है। इसी तरह से हमने हरि नाम लेते हुए भी देखा है, महामंत्र का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, कुछ समय के बाद नींद आती है। तो इसी तरह यहां पर बताया गया है। समय क्या है? तो ये यहां पर बताया जा रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि केवल श्रवण करना ही पर्याप्त नहीं है, श्रवण के बाद ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग उसके ऊपर विचार करें, मनन करें। 4-5 भक्त लोग बैठे आपस में, जैसे कि कई बार हम लोग ग्रुप प्रोग्राम करते हैं, है ना, भक्ति वृक्ष के ग्रुप प्रोग्राम करते हैं या स्टार्टअप प्रोग्राम करते हैं, तो उन भक्तों को चाहिए कि कक्षा के बाद चार पांच भक्त बैठे और आपस में चर्चा करें कि आज हमने क्या सुना था, आज श्लोक में किस बात की व्याख्या की गई थी, वास्तव में आज के श्लोक से क्या टॉपिक निकलता है, कौन से तीन महत्वपूर्ण बातें बताई गई इस तात्पर्य में, आप बताइए आप बताइए। तो इस तरह से करने से क्या होगा, वो श्लोक जो है हमारे मन में प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल, वो कभी श्लोक को भूलेंगे नहीं, क्योंकि कलयुग का धर्म है ये, कली काले धर्म, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि जब तक आप सुनी चीज को, पढ़ी हुई चीज को बोलेंगे नहीं, आपको याद नहीं होगा। कोई भी चीज को आप स्मरण करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उसका सबसे आसान तरीका है बोलना। यह रहस्य है। अगर आप कोई भी ग्रंथ में आप चाहते हैं कि इसे पकड़ आ जाए और लगे कि यह ग्रंथ मेरे दिमाग में है, अब उस ग्रंथ का उच्चारण आपको बार बार करना पड़ेगा। किसी को भी पकड़ लो और बिठा दो उसको और सुनाते जाओ, या कम से कम उससे चर्चा करो, तो उस बोलने से क्या होगा कि आपको याद होने लगेगा। शुरू में जब आए थे हम लोग, मुझे याद है यहाँ पे 12 नंबर में कुछ नए भक्तों के साथ हमारी क्लास होती थी, तो दो या तीन ही भक्त होते थे, तीन नए भक्त थे, एक तो राधिका रमन प्रभु थे, एक वो सच्चिदानंद प्रभु थे, ऐसे तीन भक्त थे। वो उनके साथ कथा चलती थी तीन से कम चार घंटे के लिए, ऐसे होते थे बड़े परेशान, वो बीच बीच में निद्रा भी आती थी उनको, लेकिन हमें लगता था सोने दो उनको, हम सुनाते जाएंगे सुनते जाएं। एक बार पंजाबी बाग में भी ऐसे ही हुआ, पंजाबी बाग में जब हम गए थे 93 में, तो वहां पर केवल चार भक्त थे मंदिर में, तो एक सुनता था एक बोलता था, एक विग्रह की पूजा करता था एक किचन में होता था। तो सब तो नहीं आ सकते हैं कथा में, सेवा छोड़कर या किचन छोड़कर, तो वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है, एक वक्ता एक श्रोता, एक ही वक्ते उस वक्ता को सुने जा रहे हैं। महीनों महीनों, छह महीने हो गए, चार चार पांच पांच महीने हो गए, वो परेशान हो गया बेचारा, क्यों, क्योंकि वो दीक्षित नहीं है बेचारा, अभी उसको व्यासासन में बैठा नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि उसकी दीक्षा नहीं हुई है, वो सुनता ही जा रहा है सुनता ही जा रहा है, लेकिन बोलने वाले को बहुत फायदा हो। तो ये छोटे छोटे जो केंद्र होते हैं हमारे प्रीचिंग सेंटर्स, कई बार भक्त वहां पर जाने से कतराते हैं, हर भक्त चाहता है कि हम बड़े मंदिर में रहें, क्योंकि यहाँ की रौनक अलग है, भक्त ज्यादा हैं, है ना, थोड़ा और ही अलग आनंद है। लेकिन छोटे केंद्रों में लाभ क्या होता है सबसे बड़ा, मजबूरी में इंसान बहुत कुछ सीखता है, और वहां पर आपको कथा करने का बहुत मौका मिलता है, और वहां पर आप रोज बोलते रहेंगे, जब रोज बोलेंगे महीनों महीनों बोलेंगे तो बन गया वक्ता, है ना, आपको ऐसी ऐसी बातें याद रहेंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी कभी सपने में। तो इसलिए छोटे छोटे केंद्र हमें खोलने चाहिए, जहां पर आपको मौका मिलेगा खुद पूजा करने का, खुद आरती करने का, खुद विग्रह की सेवा करने का, विग्रह तो नहीं लेकिन जहां पर जो भी रखा आपने, गौरताय का विग्रह रखा हो आपने, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो ऐसा सेवा करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। जैसे हमारा पंचशील का सेंटर है, है ना, वहां पर अभी तो केवल दो भक्त रहते हैं, बाकी तो लड़के रह रहे हैं, हम जब गए थे तो वहां तीन चार भक्त रह रहे थे, लेकिन सबको वहां पर मौका मिल गया क्लास देने का, सबको मौका मिल गया आरती पूजा करने का, सबको मौका मिल गया कुकिंग करने का, सबको मौका मिल गया गुरु पूजा करने का, सबको मौका मिल गया मंदिर साफ करने का, सबने सब कुछ किया, क्योंकि सबने सब कुछ किया इसलिए सबको सब कुछ आ गया। अब बड़े मंदिर में क्या है, अगर हम आपसे पूछे आप में से कितने लोगों ने, जो खासकर बाहर से आ रहे हैं भक्त लोग, आप में से कितने भक्तों ने आकर यहां पर गुरु पूजा की होगी, आरती की होगी, प्रभुपाद हाथ खड़ा करिए, क्योंकि ये बड़ा मंदिर है, यहां पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त रहते हैं, इसलिए आपको वेटिंग लिस्ट पर रुकना पड़ता है, तो इस कारण से जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, तो इस कारण से सीखने का मौका मिलता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें तो बोलने का मौका नहीं मिलता, बोलने का बहुत मौका है, क्योंकि संसार में बहुत सारी जगह है, कहीं भी जाके सुनाओ, है ना, बोलने के लिए बहुत जगह है, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा जाने के लिए। आप जाइए बोलिए, अभी 10-10 बेस खुल गए हैं, किसी भी देश पे चले जाइए और बिठाइए दो लड़कों को, बोलना शुरू करो, मैं आ रहा जी कथा करने के लिए, बैठना तैयार रहना, बोलते अच्छा प्रभु जी आ रहे संग देने के लिए, बस सुनाते जाओ 2 घंटे उसको। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए प्रचार का,
प्रचार जो है सेमिनार हॉल में नहीं सीख सकते हैं। सेमिनार हॉल में आप पूरा जीवन बिता दोगे तभी आप प्रीचिंग नहीं कर पाओगे। प्रचार तभी होता है जब हम मैदान में जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, कुकिंग सीखना है तो किचन में जाना पड़ेगा, है ना। बाहर से नहीं देख सकते कि किचन में कुकिंग कैसे हो रहा है, देख लो पहले मैं, है ना, कैसे आपने चूल्हा जलाया दिखाना जरा, खुद जलाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से क्या है कि हमें अभ्यास करना चाहिए प्रचार का, प्रवचन देने का, बात करने का, तब अपने आप फिर आपको आदत पड़ जाएगी, अपने आप आदत पड़ जाएगी। लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं अगर जाने की तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये यहां पर बताया गया। आगे थोड़ा सा बड़े एक कथा सुनाते हैं, फिर अगली बार आगे लेंगे, समय कम है। ये कथा है, बहुत सुंदर कथा है, पहले भी आपने सुना होगा। ये भागवत का महात्म्य है, श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में दिया गया है और उसमें ये कथा सुनाई गई। तो धुंधली और आत्मदेव, ये पति पत्नी थे, आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली और उन्होंने एक एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोद लिया था, एक पुत्र को गोद लिया उन्होंने, संतान को गोद लिया और उसका नाम था गोकर्ण। एक गोकर्ण की कथा है, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है। और साथ में धुंधली की जो बहन थी उसका एक लड़का था धुंधकारी। वो धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, दुष्ट प्रवृत्ति का था और बहुत ज्यादा पापी था और गांव में उसने हमेशा उत्पात मचाया। तो एक दिन जो है धुंधकारी मर गया और धुंधकारी मरने के बाद वो क्या बना, भूत बना और भूत बनकर वो इधर उधर भटकता रहा और भटकता रहा। तो एक बांस की लकड़ी का उसने सहारा लिया, क्योंकि होता क्या है भूत को स्थूल शरीर नहीं प्राप्त होता है, तो कोई भी स्थूल जगह पर जाकर उसका वो आश्रय लेता है। तो उसने बांस की लकड़ी का सहारा लिया और वहां पर रहकर वो रहने लगा। तो एक दिन अपने भाई के लिए, क्योंकि ये भाई सगा भाई तो नहीं था लेकिन स्टेप ब्रदर था, तो उसके उद्धार के लिए करुणा वर्ष जो है गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। भागवत सप्ताह के बारे में बताया गया है पद्म पुराण में, लेकिन भागवत सप्ताह का आयोजन किस तरह से करना चाहिए यह भी बताया गया है। तो सब कुछ पढ़ना होगा, है ना, केवल शब्द सप्ताह का उपयोग करने से पर्याप्त नहीं है, है ना। फिर सातवें दिन तो हमने देखा नहीं कोई धाम जाते हो किसी को, क्योंकि जो सात दिन में वास्तव में अगर भागवत के अनुसार या पद्म पुराण के आधार पर सात दिन कथा करेगा निश्चित रूप से जाएगा धाम, जिस तरह से परीक्षित महाराज ने किया। सूत गोस्वामी जो कर रहे थे कथा वो तो 1000 साल के लिए चला, वो तो एकत्रित हुए वहां पे हुए थे यज्ञ करने के लिए 1000 साल के लिए। तो सात दिन की जो कथा हुई, तो सात दिन की कथा हुई भागवत का जो द्वादश स्कंद है 12 स्कंद उन्होंने सात दिन पूरा किया और धुंधकारी जो है उसको भूत के शरीर से छुटकारा प्राप्त हुआ और उसको क्या हुआ, देव स्वरूप प्राप्त हुआ, वैकुंठ का स्वरूप प्राप्त हुआ और वैकुंठ से विश्वदूत आए और धुंधकारी को अपने साथ ले गए। धुंधकारी के स्वरूप को देखा, उसके गले में तुलसी की माला थी, पीत वस्त्र उसने धारण किया हुआ था और सिसरा से कृष्ण का, भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है, उस श्याम वर्ण का दिख रहा था वो, और उसने मुकुट धारण किया हुआ था, रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ था, मोर पंख नहीं था उसमें मुकुट धारण किया हुआ था, कुमंडल थे मतलब कुंडल थे, तो इस तरह से नाना प्रकार के आभूषणों से रत्नों से वो जड़ित था, सुसज्जित था। तो धुंधकारी चला गया, कहां चला गया वो, धाम चला गया। लेकिन बाकी लोग धाम क्यों नहीं गए, भूत चला गया धाम, लेकिन सात दिन जो कथा सुन रहे थे वो क्यों नहीं गए, जीते जागते लोग वो क्यों नहीं गए धाम, है ना। जीते जागते लोग नहीं गए, जिनको हम देख रहे हैं हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सामने बैठे लोग तो धाम नहीं गए लेकिन ये भूत हमारे सामने धाम चला गया, ये बहुत बड़ा इंसल्ट नहीं हुआ हमारे लोग, क्या हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने गोकर्ण से प्रार्थना की, तो गोकर्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कथा करेंगे। और उसके बाद गोकर्ण ने वैकुंठ, ये जो वैकुंठ ले जा रहे थे विश्वदूत, उनसे पूछा कि आप लोग जा रहे हैं लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
और इन्हें प्रश्न पूछा कि कई लोग थे यहां पर सभा में और लेकिन आप तो केवल एक ही यान लेकर आए, वायु यान लेकर आए वैकुंठ से, एक ही वैकुंठ एयरलाइंस में से एक ही फ्लाइट आई और केवल एक ही व्यक्ति के लिए, बाकी लोगों को क्यों नहीं लेकर गए आप? तो उन्होंने बताया कि वास्तव में सब लोग जो सुन रहे थे वो सब एक स्तर के नहीं थे, सब एक स्तर के श्रोता नहीं थे, कुछ तो उसमें सो रहे थे, कुछ सुन रहे थे एक कान से फिर दूसरे कान से निकाल रहे थे, है ना? तो इस प्रकार के कई प्रकार के श्रोता थे उसमें, इस कारण से उनके हृदय में भगवत प्रेम जागृत नहीं हो पाया। तो ये बताया यहां पर उन पार्षदों ने बताया, डिफरेंस इन रिजल्ट कम टू द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ देयर हियरिंग, एवरी वन प्रेजेंट इज ट्रू लिसन टू द भागवतम बट नॉट एवरी वन रिफ्लेक्टेड ऑन वॉट दे हैड हर्ड, द डिफरेंस इन रिजल्ट केम फ्रॉम दिस एज वेल एज फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्शिप। तो इस कारण से, क्योंकि उनके सुनने का स्तर अलग अलग था, इस कारण से तो भूत था, उसने 7 दिन 7 रात लगातार ध्यान से सुना भी, और उसने उसके ऊपर मनन भी किया, मनन करके उसने सोचा कैसे मैं इसको जीवन में उतारूंगा, निरंतर उसका ध्यान लगाया, इस कारण से क्या हुआ, उसको पूरा लाभ मिला भागवत श्रवण का। भागवत श्रवण एक एक शब्द क्या हमें देखना चाहिए, भागवत का हम सुनते, कथा जब सुनते हैं या कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी क्लास सुनते हैं, मान लीजिए कोई भी कथा, ये भागवत कथा के बारे में जोर दिया इसलिए हमने भागवत कथा करके यूज किया हमने शब्द यहां पर, कोई भी हम कथा सुनते हैं, कोई भी प्रवचन सुनते हैं, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमने एक एक शब्द को सुना, क्या केवल एक लाइन सुना फिर दूसरा लाइन ही सुना आपने, दूसरा लाइन सुना फिर तीसरा लाइन ही सुना, या कुछ लाइन्स में सो गए, कुछ लाइन्स के बाद हम लोग जागे। तो ये सब हमें विचार करना होगा, कम से कम इस बात पर तो विचार करें, अगर श्लोक पर विचार नहीं कर सकते हैं तो इन बातों पर विचार किया जाए कि कहां कहां मैं सोया था, कहां कहां नहीं मैं सुना था, क्यों मुझे नींद आई, इस पर तो विचार करें। रोगी कम से कम इतना तो विचार करे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि रोगी ये ना सोचे क्लास समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो क्लास कल सुबह होगी, अब प्रसाद का समय हो गया है, क्या विचार करना, रोग है अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, आसमान से कुछ नहीं टपकता है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि जीवन भर ऐसा करते जाओ अचानक गोलोक से लोग आएंगे और हमें धाम ले जाएंगे, अचानक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, इन सबका मत यह है कि आपको शरीर छोड़ने से पहले ही भगवत प्रेम जागृत करना होगा, छोड़ने के बाद भगवत प्रेम नहीं जागृत करना है, शरीर छोड़ने से पहले पता होना चाहिए कि आपका संबंध क्या है कृष्ण के साथ, स्वरूप सिद्धि जिसको कहते हैं, तभी उस साधना को पूरा माना जाएगा। साधना आपने यही पूरी नहीं की तो शरीर छोड़ने के बाद कहां से पूरी होगी? तो इसका मतलब यह है कि साधना पूरी नहीं हुई है तो दोबारा भौतिक शरीर मिलेगा, दोबारा साधना करो फिर, या तो इस बात से हम समझ सकते हैं इस तरह से। अगर आप सोचते हैं कि हाँ हो रही है साधना, चलते रहने दो, अभी तक मुझे पता नहीं स्वरूप क्या है मेरा, लेकिन निश्चित रूप से शरीर छोड़ने से पहले कुछ हो जाएगा, ऐसा समथिंग विल हैपन, है ना, स्पेकुलेशन जिसको कहते हैं। तो ये शास्त्र मत नहीं है, हमारे आचार्य लोग इसकी सहमति नहीं देते। तो इसलिए उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गोकर्ण ने और सबने कथा सुनी, तो उसके बाद सब लोगों को ले गए, उसके बाद सब लोगों के लिए वैकुंठ से आए और सब लोगों को धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस बात को हमें बड़े ध्यान से समझना, तो ये मनन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मनन नहीं करेंगे और उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कैसे लागू किया जाए, तब श्रवण भी हमें श्रवण का पूरा लाभ हमें मिलता नहीं है, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण समझने के लिए, कि भागवत समझने के लिए, भागवत पुस्तक को समझने के लिए भगवत भक्ति में लगना बहुत आवश्यक है, सेवा में लगना बहुत आवश्यक है। बिना भक्ति में लगे, व्यवहारिक सेवा में लगे, बिना भागवत व्यक्ति के सेवा किए हम भागवत पुस्तक को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में भक्त्या भागवतम ग्रायम न बुद्धया न चीटिकया, केवल टीकाओं का अध्ययन करने से, जैसे भागवत की कम से कम 30 टीकाएं उपलब्ध हैं, गुजरात से पब्लिकेशन निकलता है, एक ही भागवत एक ही वॉल्यूम आता है, उस एक वॉल्यूम में 30 कमेंट्रीज है, 30, और फर्स्ट श्लोक भागवत के फर्स्ट श्लोक में 30 कमेंट्रीज है, 30 आचार्यों ने टीकाएं दी हैं भागवत के श्लोकों में, और पहले श्लोक पे तो 30 आचार्यों ने टीका दी है जो उपलब्ध है पहले श्लोक में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले श्लोक के ऊपर 30 प्रकार से उसका वर्णन किया लगातार एक महीने शायद ढाका में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले श्लोक के ऊपर, वो आगे बढ़े नहीं, पहला श्लोक उसी पर व्याख्या करते रहे। तो यहां पर ये बताया है ना बुद्धया ना चटीकया, मतलब इस भौतिक बुद्धि से विद्वत्ता से या टीका से हम लोग भागवत को नहीं समझ सकते हैं। भागवत समझना है हमें तो भागवत पुरुष का, भागवत व्यक्ति का आश्रय लेना होगा, वैष्णव का आश्रय लेना होगा, उनकी सेवा जब हम करेंगे तो भागवत का जो मर्म है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए भागवत का अध्ययन करने के लिए हमें भागवत व्यक्ति के पास जाना चाहिए। वैष्णव पाश करो भागवत अध्ययन, यानी वैष्णव के पास जाकर करो भागवत का अध्ययन, जिस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोला, जिस तरह से उस बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर ने बंगाली कवि को बोला कि अगर भागवत सीखना चाहते हो तो भागवत व्यक्ति के पास जाओ, महाप्रभु के पार्षदों से भागवत का अध्ययन करो, ये बहुत जरूरी है, तब भागवत का मार्ग समझ में आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति बिना भक्ति के, बिना सेवा के, व्यवहारिक सेवा के कोई भी शास्त्र हम नहीं समझ सकते। केवल सूखा ज्ञान जो है हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाएगा। कोई बोले कि बस मैं अध्ययन करता हूं, बस अध्ययन करने से वो याद नहीं रहेगा, ये याद तभी रहेगा जब हम शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उसको अपने जीवन में ढालते हैं, उसका मनन करते हैं और उस वैष्णव की सेवा करते हैं जो भागवत स्वरूप है। भागवत स्वरूप मतलब उनमें और भागवत में कोई भेद नहीं है, ऐसे भागवत की जब सेवा करेंगे जो लिविंग भागवत है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं माई गुरु महाराज वॉज लिविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ भागवतम, वॉकिंग भागवतम, चलते फिरते भागवत है वो। तो इस तरह से ऐसे भागवत की जब सेवा करते हैं तो भागवत के जो श्लोक है, भागवत का जो मर्म है, भागवत का जो रहस्य है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, तब समझ में आएगा भागवतम। नहीं तो जीवन भर हम केवल अध्ययन करते रहेंगे तो केवल शुष्क ज्ञानी बन जाएंगे। कोई प्रश्न है, यहीं पर विराम देते। हरे कृष्ण लाल की जय। हाँ जी पूछिए। Yes, that is the goal, but we should not the process. We should know the process also, how to achieve that goal. Sadhya और साधन दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में तो साधन भक्ति में लगना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन साध्य को ध्यान रखते हुए। साधन यह है कि आप जानते हैं कि आप गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाएंगे, स्टेशन जाकर आप ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि टिकट कहाँ का लिया है, बम्बई जा रहे हैं या कलकत्ता, कलकत्ता जा रहे हैं तो बम्बई की ट्रेन में नहीं बैठना आपको, वो भी साधन है लेकिन कहीं और ले जा रहा आपको, तो इसलिए साध्य का भी पता होना चाहिए। और साध्य को प्राप्त करने के लिए ये साधन भक्ति दी गई है, वैधि साधन भक्ति दी गई है। वैधि साधन भक्ति जब पूर्ण होने लगती है तो फिर आगे राग मार्ग में पढ़ना होता है, उसमें भी साधन भक्ति है, इसको रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। और उसके बाद भाव जागृत होता है तो भाव भक्ति के धरातल पर पहुंचते हैं, तब जाके कहीं स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति है। नहीं, दिस इज एनकरेजिंग बिकॉज दिस इज साइंटिफिक। करंट सिचुएशन इज डिजीज्ड, We are all patients in the hospital. But there are also doctors who are treating us. अगर doctors हैं, इसका मतलब patients हैं, इसका मतलब ये है कि वो doctors कैसे बने? यहां जो patients हैं, वो patients भी doctor बनने वाले हैं. सामान्य तो hospital से patient doctor बने नहीं जाते हैं. वो तो केवल इलाज करके वापस आ जाते हैं अपने घर में दोबारा पाप करने के लिए. लेकिन यहां जो patients हैं, वो doctor बनने के लिए आए हैं. स्पिरिचुअल हॉस्पिटल और बाहर के हॉस्पिटल में अंतर है. तो यहां बीमारी दूर करके हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं. डॉक्टर बनना पड़ेगा सबको, स्पिरिचुअल डॉक्टर. तो जोर से बोले आप, धीरे धीरे बोलो, स्पीक लाउडली. हाँ, लाभ होता है. MP3 में ऑडियो वीडियो में सुनने का लाभ होता है. लेकिन आप पीना नहीं, पी नहीं पाएंगे आप. पिबत भागवतम रसमालयम, वो जो पीना वाला बात है वो तो सामने बैठकर ही होगा. सामने जब होता है, वक्ता के सामने जब होते हैं, जो वक्ता के हृदय में जो भाव होता है, वो भाव भी श्रोता के हृदय में ट्रांसफर होता है, केवल शब्द नहीं. यानी कि वक्ता का अगर मन दूषित है मायावाद दर्शन से, तो श्रोता का भी मन दूषित हो जाएगा मायावाद दर्शन से. जैसे सर्प उच्चिष्ठ यथापया, वो क्या करते हैं, दूध के साथ जहर मिला के देते हैं. श्रोता फिर जहर पीता है साथ में. वो सोच रहा है कि कृष्ण कथा सुन रहा है, लेकिन साथ में जहर पी रहा है, और ज्यादा दूषित हो जाता है. लाभ तो है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन जितना लाभ सामने सुनने में है, वो लाभ नहीं मिलेगा आपको. तो भगवान गीता में क्यों कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन. प्रणिपातेन का मतलब है अप्रोच करो, फिजिकली अप्रोच करो, जाओ उसमें तत्वदर्शी के पास जाके सामने बैठो. क्या चीज प्रश्न आप पूछ रहे हैं, किसको सुनाई नहीं दे रहा. अच्छा, थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास, मुझे नहीं सुनाई दे रहा ना. सो वी शुड गो इनटू द डिटेल्स, व्हाट इज ट्राइंग टू से, रीड चैंट एसोसिएट एंड प्रीच, व्हाट डज इट मीन. सो वी शुड ट्राई टू इंक्वायर फ्रॉम द डिवोटीज, फ्रॉम द शास्त्र. वी आर स्टडिंग शास्त्र. भक्ति रसाम सिंधु is there, you study this book, you will come to know what do you mean by association. तो श्रवण का एक बात बताना भूल गया मैं, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण बात, अच्छा हुआ याद आ गया. श्रवण में एक बात बहुत जरूरी है, केवल हरि कथा सुनना ही श्रवण नहीं है. वो साधु संघ में आता है ये बात, क्योंकि भागवत श्रवण में आ गया तो उसको हम उसको रिलेट करना चाहते हैं कि केवल इस सोचे कि हरि कथा हो रही है तो वो साधु संघ है, ऐसा नहीं है. उसका जो है उसकी हानि भी हो सकती है, उसकी हानि भी हो सकती है. वो हानि क्या है उसकी चर्चा की जा सकती है. उसकी हानि ये है कि मान लीजिए कि आपके दीक्षा गुरु कहते हैं कि आप वहां कथा सुनने मत जाओ, और वो हरि कथा है, और आपको मना कर रहे हैं आपके आध्यात्मिक गुरु, आपके दीक्षा गुरु आपको मना कर रहे हैं, और फिर भी आप चले जाते हैं सुनने के लिए. पहले तो हुआ गुरु अवज्ञा, और दूसरा क्या उसका लाभ होगा, लाभ नहीं परिणाम होगा, मतलब हानि क्या होगी कि आप जब वापस आएंगे आपकी जो श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति वो कम हो जाएगी, और फिर आप निंदा में लग जाएंगे कि यहां तो ऐसा कुछ व्याख्या होती नहीं, इतनी सुंदर व्याख्या कोई करता नहीं है, यहां तो केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में चर्चा करते हैं. तो ऐसे श्रद्धा कम हो जाती है अपने गुरु के प्रति, यानी कि आप गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं. गुरु तो हमें वो दे रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, उतनी ही हमें दवाई दे रहे हैं. देखा गया ये कई बार, कई लोग भागवत कथा सुनकर आते हैं वो आते ही शुरू कर देते हैं बुराई सबकी। बोले क्या क्लास हो रहा है, क्लास में नींद आ रही है, ये कोई क्लास है? हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपराध हो जाता है, क्योंकि वास्तव में अगर कृष्ण कथा का श्रवण किसी ने किया होगा तो उसका मन निर्मल हो जाता है, वो निंदा रहित हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको कृष्ण कथा सुन ली आखिर वो भक्तों की निंदा करे। इसका मतलब उसको कृष्ण कथा का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसे वो अवज्ञा करके गया है, कृष्ण ने कोई कृपा नहीं की। और वहां जो उसको कृपा मिली ऐसा लगा वो केवल उसको आभास हुआ है। आभास का मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य के नीचे आप खड़े हो गए, गर्मी तो लगेगी लगेगी, लेकिन जैसे आप कमरे में आएंगे तो फिर वातावरण बदल जाएंगे। और ऐसे कथा सुनने वाले जैसे ही वापस आते हैं, वापस अपने आश्रम में या अपने मंदिर में आते हैं, अपने गुरु के स्थान में आते हैं, तो सब ठंडा हो जाता है, वैसे जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि आपके अनर्थ कटे ही नहीं, अनर्थों की निवृत्ति हो ही नहीं। क्यों नहीं हुई अनर्थों की निवृत्ति? इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने वो भजन क्रिया के प्रोसेस को नहीं अपनाया जो कि दीक्षा गुरु ने आपके लिए दिया है। आपने कुछ और अपना लिया जिसका जिसके लिए आपके दीक्षा गुरु सहमत नहीं है, इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उल्टा हानि हो रही है। तो इस बात को हमें समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो एक यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बता दें या अगली बार बताते हैं? ठीक है, अगली बार बता दें क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा फिर ये। ठीक है, ये साधु संघ की जब चर्चा करेंगे उसमें बताएं आगे, उसमें भी इससे रिलेटेड है लेकिन उसमें थोड़ा और हाईलाइट कर लें, इसी में और पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण। तो भक्ति रसाम सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैश्व वृंद की जय, हरे कृष्ण। अच्छा, ये नगर संकीर्तन है हरिना ईस्ट दिल्ली में 23 जून 2007 शनिवार के दिन। हम लोग बार बार शास्त्रों में यही तो कहते हैं कि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है और इसका प्रवचन भी देते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब नाम संकीर्तन होता है तो कोई होता नहीं। तो प्लीज आप लोग समय निकाल कर आइए,